क्या हुआ? चालू?
हाँ रिकॉर्डिंग दबा, वो भी आपने जो बोला था दोबारा रिकॉर्डिंग दबाए।
कब? शुरू से?
हाँ।
नमस्ते राकेश जी, आज हम NCBS बैंगलोर के आर्काइव ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तरफ से आपकी इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपकी वर्क एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। अगर आप ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के बाद ये रिसर्च और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ होगा, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो अभी बता दें, नहीं,
नहीं
तो
जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है,
हम इस्तेमाल। ओके, थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल मेरा है कि मतलब आप इस लाइन में क्या हुआ, आप इस लाइन में आए, व्हाट वाज द
एक्चुअल? मैं दिल्ली से हूँ और लाजपत नगर रेजिडेंस है मेरा, तो पढ़ाई भी दिल्ली से की है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया था, उसी के साथ एक प्रोजेक्ट था हमारा ट्रांजिस्टर बनाने का, उसमें थोड़ा काम किया तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक की तरफ भी झुकाव हो गया। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के ऊपर दोबारा मैंने पोस्ट डिप्लोमा किया, और इसके बीच में मैंने कुछ 2-3 साल एक बेंटेक्स कंपनी थी उसके लिए काम किया, और अप्पू घर जब नया नया आया था उसके इंस्टॉलेशन में भी मैंने काम किया। तो एक नया प्रोजेक्ट था क्योंकि वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड था, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल दोनों चीज़ें थी, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं थी कुछ भी, लेकिन उनके जो कंस्ट्रक्शन शुरू में चाहिए था वो सारा कुछ बनाया, टीम वर्क भी था और कुछ प्रॉब्लम भी थी उन चीज़ों को, नई नई चीज़ें थी और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड थी। तब हमने 3D वो बड़े वाला एक स्टूडियो बनाया था, वो प्रोजेक्टर हॉल जिसमें फिल्म चलती थी, 210 डिग्री का उसका वो रहता था विजन एंगल। इस तरह से काफ़ी चीज़ें नई देखने को मिले वहाँ पे, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट तो था ही। तो 85 जून में मेरा सिलेक्शन हो गया था इसमें TV में एज ए EA, और मेरी पोस्टिंग रही श्रीनगर DDK में। तो उस टाइम में वहाँ पे जितना भी इक्विपमेंट था काफ़ी कुछ ओल्ड एज का कह सकते हैं, टेरेट कैमरे थे, वीडिकॉन के टेलीसिने थे और हर तरह का वहाँ इक्विपमेंट था, और ट्यूब कैमरा थे, वो बाद में आए थोड़े ENG के अंदर, वही न्यूज़ में यूज़ होते थे, और तब लो बैंड का टाइम था, हाई बैंड के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे। तो उसके साथ साथ हमने ऑपरेशनल जो काम किया स्टूडियोज़ में ज़्यादा किया, तो वो क्योंकि उसको मेंटेन करने में उनको बहुत टाइम लगता था, हमारे जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे और उनकी टीम थी, उसको पूरे को उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट था तो मेंटेन करते थे। 88 में वहाँ पे कलर TV आया, और उसके साथ ही मैंने लाइटिंग और फॉर कलर टेलीविज़न इसके लिए ट्रेनिंग की थी AIBD से, और उनका कोर्स रहा, 3 हफ्ते का कोर्स था, तो उसका ट्रेनिंग करने का मौका मिला। तो फिर उसके बाद काफ़ी प्रोडक्शन में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ श्रीनगर में, और 1.5-2 साल के करीब अच्छी प्रोडक्शन वहाँ दी, और उसके साथ साथ हमारे एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे बिंद्रा जी, उन्होंने वहाँ पे एक नई डेवलपमेंट की कि मल्टी कैमरा सेटअप अदरवाइज OB वैन में बनता था, तो उन्होंने एक छोटी वैन के अंदर एक 3 कैमरा सेटअप बनाया था, और उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह सारे उसमें इन्वॉल्व रहे, और उनकी गाइडेंस में वो वैन से प्रोडक्शन भी करी हमने। और उस टाइम में एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हुआ था वहाँ पे, और उस टाइम माइक्रोवेव लिंक ज़्यादा यूज़ करते थे, और लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, वहाँ पे आंधी आ गई, तो जितना हमने वहाँ से वायरिंग की हुई थी सारी डिस्टर्ब हो गई, तो दोबारा से उसको बड़ी शॉर्ट टर्म के अंदर हमने उसको मेंटेन किया, काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे उसमें और पूरा टीम वर्क था उनकी गाइडेंस में, बड़ी जल्दी और ऑन टाइम सारा अच्छा रहा पूरा प्रोडक्शन हमारा उस टाइम में। और बाकी आउटसाइड जो प्रोडक्शन होती थी उसमें भी इन्वॉल्वमेंट रहती थी, कोई सीरियल है कोई वो है, क्योंकि कलर लाइटिंग के अंदर मैं ही एक्सपर्ट हुआ करता था उस टाइम, तो वहाँ पे काफ़ी प्रोडक्शन दी। तो फिर 88 में मैं यहाँ आ गया था दिल्ली में। तो दिल्ली में हमारा जो रहा एक्सपीरियंस वो ज़्यादातर ट्रांसमिशन में रहा। तो उस टाइम में क्या होता था कि हर आदमी ना श्रीनगर जैसी जगह में भी जो लोग ऑडियो करते थे वो ऑडियो ही करते थे, जो वीटीआर करते थे वीटीआर करते थे, जो मल्टी लेवल नहीं था। लेकिन जब से फिर हम लोग आए तो हमारे जितने भी इंजीनियर्स थे उनको मल्टी लेवल पे बैठना शुरू हुआ। ऑडियो वाला वीटीआर भी करता था डिफरेंट पोजीशन में। हम लोगों ने वो सारा चीज़ एक मोनोपोली थी वो सीख के सारे वो ख़त्म की, कि हर आदमी हर पोजीशन पे बैठेगा और जिससे शिफ्ट जो है बड़ी स्मूथ चलते थे। पहले क्या होता था एक पोजीशन पे तीन तीन चार चार लोग होते थे, और 8 घंटे के अंदर मतलब अगर आपकी 8 पोजीशन है तो 24-25 लोगों की शिफ्ट रहा करते थे, उसके अलावा मेंटेनेंस के लोग रहते थे और फिर सीनियर भी रहते थे और हम लोग भी रहते थे। तो हमने उनसे सीखा भी बहुत, ऐसा नहीं उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो ऑनलाइन ट्रांसमिशन के अंदर अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसको रिमूव कैसे करना और मिनिमम टाइम के अंदर करना।
और
उसके बाद हाँ जी बताइए।
तो ये 88 में जब आप दिल्ली में आए तो आप ये ट्रांसमिशन में बेसिकली सेट द कंट्रोल सेंटर पीपल,
सेंटर नेशनल लेवल पे
तो उसमें लोगों को अलग अलग सीटों पे बैठा के एक रोटेशन टाइप का बना दिया ताकि सभी फेमिलियर हो गया सब
सभी
सब लोग।
पोजीशन में
ये उस समय पहली बार हो रहा था ऐसे?
हाँ। उससे पहले क्या होता था श्रीनगर से थोड़ा सा हमें, क्योंकि श्रीनगर के अंदर क्या था इक्विपमेंट बहुत पुराना था और उसको मेंटेन करने में क्या था, जैसे ऑडियो के रैक के अंदर वो पूरा अगर एट लास्ट मोमेंट कोई भी ऑडियो के अंदर डिस्टर्बेंस हो गए तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते थे। पैचिंग करना उसको अलग से, आपने डायरेक्ट करना, सोर्सिंग करना, तो वो जिसको मालूम होगा वही कर पाएगा कि इस पूरे चेन के अंदर मुझे कहाँ प्रॉब्लम आएगी या कितनी प्रॉब्लम आती है, वो एक्सपीरियंस से लोगों को आता था। और हम लोग न्यू जनरेशन के लोग थे, हमें उसका चेन का पूरा नहीं मालूम था। तो वो लोग उन्होंने हमें सिखाया 2-3 साल में। तो जब हम वहाँ पे 3 साल रहे, 3.5 साल रहे, तो उन लोगों ने हमें इतना ट्रेंड कर दिया कि हम हर पोजीशन में उसको हैंडल कर लेते थे प्रॉब्लम को। तो प्रोडक्शन के साथ साथ हमें वो फिर ट्रांसमिशन में भी बिठाते थे।
ये एक तरीके से क्योंकि श्रीनगर छोटा स्टेशन था इसीलिए लोगों को
नहीं, ऐसा नहीं था छोड़ा, लेकिन उनका ट्रांसमिशन कंट्रीब्यूशन था 2 घंटे का 2.5 घंटे का था, लेकिन उसमें जो न्यूज़ का जो मेन पार्ट होता था वो न्यू लोगों को सिर्फ एक पर्टिकुलर पोजीशन थी उन्हीं पे दिया जाता है, जैसे लाइटिंग होगी सीसी हो गया, तो इस तरह की कंट्रोल की पोजीशन दी जाती थी ताकि वो लोग आरडीए हो गया वीटीआर हो गया और वीएम हो गया, ये 3 पोजीशन ऐसी थी जो मेन लोग जो एक्सपीरियंस लोग थे वही हैंडल करते थे। लेकिन जब हम 3 साल के बाद नेशनल में आए तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ लोग जालंधर से आए थे, कुछ कहीं से आए थे, तो हमारा जो ग्रुप बना 85 में जिन लोगों ने ज्वाइन किया तो वो मल्टी लेवल हो चुके थे। तो यहाँ आके हमें काफ़ी नई चीज़ें भी सीखने को मिली, देखने को भी मिली।
तो इसमें आपका मेंटेनेंस में भी रोल था?
मेंटेनेंस का इतना रोल नहीं, पर मैंने थोड़ा बहुत मेंटेनेंस में किया था, ये ओबी वैन और ईएनजी मेंटेनेंस के अंदर मैंने थोड़ा कंट्रीब्यूशन था मेरा शुरू में
किस
डेढ़
टाइप,
दो साल का।
किस टाइप का कंट्रीब्यूशन मतलब?
जैसे ईएनजी मेंटेनेंस रहता था, न्यूज़ गैदरिंग के जो कैमरे हैं उनका कुछ प्रॉब्लम है, कंपोनेंट लेवल पे तो नहीं होता था, साथ में टीम रहती थी, एई रहता था, टेक्नीशियन रहते थे, सीनियर टेक्नीशियन रहते थे, तो हम साथ में लर्निंग भी करते थे। एक सर्किट बोर्ड, एक सर्किट देखता था, दूसरा उसको रिपेयर कर देता था, तो ऐसा टीम में मतलब फॉल्ट फाइंडिंग में काम करते थे।
तो फॉल्ट फाइंडिंग भी टीम के बेसिस पे होता है?
हाँ, तीन चार लोगों की टीम रहती थी, वही उसमें कर लेते।
आप मेरे को थोड़ी देर पहले बता रहे थे जब हम बाहर बैठे थे अबाउट दिस, एक ओबी वैन आपने वो उसके पीछे क्या, क्योंकि वो तो एक एक तरीके से
एक्चुअल क्या है, हमारी जितनी भी ओबी वैन रहती थी पहले, वो बहुत बड़े उसमें रहती थी, बड़े ट्रक के अंदर रहती थी, और उसमें कैमरा का और इसका बहुत बड़ा रोल रहता था, ऑडियो वीडियो की केबल भी रहने हैं, पूरा स्टैप भी रहना है, तो एक बहुत बड़ी केबल वो वैन रहती थी, पूरा एक तरह से ट्रॉलर समझिए। तो वहाँ पे क्या होता है, उस टाइम में जो ट्यूब कैमरा रहते थे या उसके बाद सीसीटीवी कैमरा आ गए, तो ट्यूब कैमरा में एक रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम, जैसे सर ने बताया, टेम्परेचर की वजह से या मूवमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम कॉमन रहती थी, हर बार हमें उसको रीअलाइन करना पड़ता था ओबी वैन में, और उसको तो करना पड़ता था। लेकिन उसके साथ जब बिंद्रा जी आए, तो इन्होंने एक छोटी सी वैन के अंदर टाटा 407 की बॉडी लेके, उसके अंदर हमने, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर का ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, नॉर्मली 30-32 डिग्री टेम्परेचर रहता था, और सीसीटीवी कैमरा आने के बाद वो थोड़ा सा कम हो गई थी प्रॉब्लम। तो फिर इन्होंने एक कैमरा सेटअप तीन का वहीं लगाया था, तो हम छोटे मोटे इंटरव्यू या कहीं पे भी बाहर जाना तो उससे हम अपना कर लेते थे, और उसमें एसी वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एक एसी से ही काम चल जाता था। तो वो काफ़ी उसने जलंधर में भी और वहाँ श्रीनगर में भी आउटसाइड प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी हेल्प की थी। तो वो डिज़ाइनिंग सारी बिंद्रा जी की थी, उन्होंने ही सबको मोटिवेट किया था उस चीज़ को करने के लिए।
तो ये मतलब एक तरीके से लोकल आपकी जो स्टेशन थी, स्टेशन में ही बनी थी अपने?
हाँ जी 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 जी,
देयर वर नो अदर आउटसाइड?
नहीं 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 नहीं, इन हाउस हमने डेवलप की थी उन्हीं के साथ।
तो ये तो शायद उसके बाद कभी दूरदर्शन में बनाई नहीं होगा?
नहीं नहीं,
पहली और आखिरी बार।
हाँ, वही उसी टाइम, क्योंकि उनके पास लूज सेटअप ले जाने में वियर टियर बहुत हो जाता था, और हर टाइम दोबारा रीसेट करने में आपको बहुत टाइम लग जाता था, पर इससे क्या है, प्रोडक्शन टाइम हमारा बहुत कम हो गया था। आप ले जाओ कहीं पे भी खड़े करो, अपना प्रोडक्शन करो और वापस आ जाओ।
तो एक सवाल जो मेरा बनता है कि तो व्हाट वाज द डिफरेंस, बड़े वाली जो आपकी वैन थी ट्रेलर वाली, ओबी वैन, और जो नया आपने बनाया छोटा, व्हाट वाज द मेन डिफरेंस जिससे इजी हो गया?
मेन डिफरेंस ये था कि इसमें ना हमने एक तो सबसे पहले ये टेम्परेचर का था कि इंटरनल टेम्परेचर जो उस पूरे सिस्टम को चाहिए वो इतना ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर वैसे ही 30 डिग्री रहा सफिशेंट था, एक एसी लगाने से काम चल गया था। बड़ी वाली वैन में आधा जो पावर सप्लाई का पार्ट है वो एसी, उसको कूलिंग करने में ही लग जाता था, क्योंकि उसमें जितना भी इक्विपमेंट लगता था पूरे स्टैप के अंदर, पूरे एक एक रैक के अंदर उनकी अपनी इतनी हीट जनरेट होती थी, और जो केबल थी वो भी बड़ी वाली थी, मल्टी पिन केबल रहती थी, इसमें हमारा बीएनसी और ऑडियो केबल अलग अलग आ जाती थी, केबलों का हल्का हो गया, काफ़ी चीज़ें मतलब कम हो गई इसमें, आप डायरेक्ट लगा के अलग से आप।
तो पावर सोर्स कहाँ होता, क्या होता?
पावर सोर्स जनरेटर देते थे
एक्सटर्नल।
हाँ जी, एक जनरेटर रहता था और पावर सप्लाई तो रहती थी वहाँ, जहाँ भी रहेगा, पर स्टैंड बाई में एक जनरेटर छोटे वाला, तो वो पेट्रोल वाला, वो साथ में ही रहता था उसके, कहीं पे भी हो तो उससे वहाँ से पावर सप्लाई ले लो।
तो इतना बड़ा पावर यूनिट की भी
जरूरत नहीं थी।
ओके, नाउ कमिंग टू, तो आप मेंटेनेंस के अब में अगर हम आए, तो मेंटेनेंस आपने कहा, मतलब वेयर, व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मेंटेनेंस इन?
श्रीनगर में ही मिला, बिंद्रा जी के अंडर ही मिला, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थी कि ENG में कई बार हम, क्योंकि इंडिविजुअल थे, शादी हुई नहीं थी, तो ज़्यादातर टाइम हम ऑफिस में ही रहते थे, तो ये होता था कई बार हमें वो कोई प्रॉब्लम आ गई, कैमरा आ गया, वो खोल रहे हैं, हम भी साथ में बैठ जाते थे, तो देख लेते थे, तो वो कई बार हमें दे देते दे थे कि इसमें ये देख लो, इसको ये चीज़ देख लो, ये सर्किट चेक कर लो, तो वो शुरुआत हमारी वहीं से हुई।
तो आप मतलब इसमें जैसे महेंद्र जी ने बताया था कि मतलब मैनुअल देखना, सर्किट डायग्राम देखना,
जी जी जी,
तो दूरदर्शन आने से पहले
जी
मतलब मैनुअल्स देखने के जो
नहीं नहीं कभी कोई एक्सपीरियंस
कभी एक्सपीरियंस नहीं था,
सिर्फ श्रीनगर जाके ही हमें एक्सपीरियंस आया। और इलेक्ट्रिकल का तो एक्सपीरियंस था, इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में जैसे ट्रांजिस्टर बना लिया, कुछ कर लिया, तो वो थोड़ा बहुत था कि पार्ट्स का पता था, कोडिंग का पता था, लेकिन जो एक्चुअल वो होता है वो इन डेप्थ नहीं था हमारे को। लेकिन जब वो टीम के साथ जब काम करते थे तो हमें कुछ सीखने को भी मिलता था, कुछ करने को भी पता लगता था। और फिर खोलने से क्या होता कि जब आपके सामने कोई चीज़ खुल रही है तो उसमें सब चीज़ें पता रहे, ट्यूब ये है, इसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगी, इसकी ये बोर्ड ये है, इसके प्रोसेसिंग क्या है, पूरे सिग्नल की प्रोसेसिंग क्या है, और उसके बोर्ड कैसे लगने हैं, कैसे काम करना है, ये थोड़ा बहुत अलाइनमेंट होनी है, किस चीज़ की कैसे करनी है, ग्रे स्केल चार्ट रहते थे, उसके हिसाब से आप अपने करते थे।
और अगर मैं आपसे कहूँ मतलब कंपेयर्ड टू कैमराज, मतलब एक तरफ कैमरा यूनिट, एक बार एडिटिंग यूनिट, प्रॉब्लम्स आपको कहाँ दिखते थे श्रीनगर में फॉर एग्जांपल? जब
जी 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 श्रीनगर में हम लोग ज़्यादातर ओबी और उसमें ही इन्वॉल्व रहते थे, तो हमारा ज़्यादातर ऑपरेशनल ज़्यादा वक्त था, क्योंकि मैंने 1-1.5 साल तो उसी में किया, लाइटिंग और बाकी चीज़ों में। ENG का पार्ट बहुत कम किया, कैमरा की प्रॉब्लम देखते थे, ENG वाला वो एडिटिंग वाला पार्ट हम लोग नहीं देखते थे, VTR का जो पार्ट रहता था, क्योंकि उसमें वो ऑपरेशनल तो हमें मालूम था, लेकिन जो टेक्निकल था वो VTR सेक्शन मेंटेनेंस करता था, हम लोग नहीं उसको देखते थे।
तो व्हेन डिड यू गेट मतलब VTR से आपका मतलब?
जो टेप रिकॉर्ड वाला पोर्शन है उसके लिए अलग रहता था, टीम अलग रहती थी।
तो जब आप श्रीनगर से वापस दिल्ली आए देन उस समय आपको VTR से ज़्यादा?
नहीं, उस टाइम भी नहीं, उस टाइम भी क्योंकि श्रीनगर में भी हमारे पास जो VTR थे, एक तो बड़े वाले VTR से 2 इंची टेप वाले, और उसके बाद फिर एक यहाँ जब दिल्ली आया तो VTR तो आगे थे, बीटा वगैरह सारे VTR आगे थे, लेकिन इसके साथ साथ BCN वगैरह भी आगे थे, तो इसमें हम छोटी मोटी एडिटिंग कर लेते थे, कई मेन ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व रहते थे, तो कभी कोई टेप ऐसा आता था कि जिसमें 2-4 फ्रेम आगे पीछे करना है, वहाँ से प्ले करना है, या दिन में जैसे ड्यूटी रहती थी तो BCN पे एडिटिंग करने के लिए उसको थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेते थे, क्योंकि उस टाइम में BCN की एडिटिंग इंजीनियर्स ही करते थे, तब एडिटर्स नहीं करते थे।
BCN माने
एक टेप रिकॉर्ड ही रहता था, उसका छोटा वर्जन था, 1.5 इंची की टेप लगती थी शायद उसमें,
2 इंची
की टेप रहती थी उसमें, तो वो बड़े रोलर होते थे उसमें, वो थोड़ा करते थे उसमें।
एंड दिस वाज ऑल वो दिल्ली वापस आके उधर
दिल्ली में ये, तो वो ट्रांसमिशन के साथ ही इसी का पार्ट रहता था।
उस टाइम डायरेक्ट ट्रांसमिशन तो नहीं होता होगा ना OBN से?
नहीं नहीं, OBN का तो पार्ट अलग था कि आपने कोई मैच करना है या कहीं करना है, OBN हाँ, नहीं नहीं डायरेक्ट भी रहता था, माइक्रोवेव लिंक रहते थे, उसके बाद तो केबलिंग भी लग गई और लिंक भी आ गए थे, तो शुरू शुरू में ये 90s की बात बता रहा हूँ, 88-90s में मेन माइक्रोवेव ज़्यादा रहता था, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन का तो इनका रहता था, MCR वगैरह।
तो ये माइक्रोवेव वाला जो ट्रांसमिशन के लिए माइक्रोवेव यूज, वो कब ख़त्म हो गया?
ये मेरे ख्याल 90s के बाद हुआ है, 93-94 तक तो रहा है, 93 के बाद कम हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया,
क्योंकि मैंने अभी वो जो HCL कंपनी उसमें आई वाज डूइंग सम इंटरव्यूज, तो वहाँ पे बात चल रही थी कि उनके पास प्रोजेक्ट आई थी ये माइक्रोवेव का, दे वर शटिंग डाउन द माइक्रोवेव सिस्टम, तो वो क्योंकि मोबाइल फोन के लिए उनको बैंड
बैंडविड्थ
चाहिए था,
बैंडविड्थ
तो और माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ खाता था, तो उसको कम करने के लिए तो हम ओके तो ये जो शिफ्ट हुआ ये तो एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट भी है, जनरेशन चेंज हो गया, तो उससे फिर आपके काम पे हाउ डिड इट अफेक्ट?
एक्चुअल क्या था कि उस टाइम में हमारा ज़्यादातर जो काम था ना, मेरी इन्वॉल्वमेंट जो ट्रांसमिशन जो माइक्रोवेव की रहती थी वो रहता था ज़्यादातर जो ट्रांसमिशन के लिए फिक्स था इनका, जैसे मंडी हाउस से या ये रेडियो स्टेशन जो था वहाँ से अपना VSNL या जहाँ से भी इंटरनेशनल ट्रांसमिशन होना या बाकी होना, तो वो उनके माइक्रोवेव लिंक फिक्स थे, तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं होती नहीं थी। लेकिन जो आप बाकी चीज़ें करते थे ओबी वैन के साथ, तो उसमें जब हम इसमें इन्वॉल्व थे स्टूडियो में तो हम फिर वहाँ नहीं होते थे, तो उस टाइम में ज़्यादातर मेरी ड्यूटी जो है स्टूडियो में रही।
तो ये जो नया जनरेशन जब आया ट्रांसमिशन में फ्रॉम माइक्रोवेव टू,
फिर इसके बाद बैंड आ गए, सी बैंड की डिश आ गई, फिर डिश से हो गया।
हाउ डिफरेंट वाज इट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग?
उसमें क्या साइड देखनी पड़ती थी आपको, माइक्रोवेव के अंदर आपको साइड देखनी पड़ती थी, आपका विजन लाइन ऑफ साइट ओके हो, क्लियर हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और उसमें आंधी तूफान कुछ भी आ गया तो आपके डिस्टर्ब हो जाती थी ट्रांसमिशन। लेकिन जब से फिर सैटेलाइट आ गया, लिंक आ गए, तो इसमें छोटी छोटी डिशें आ गई, पहले बड़ी डिशें थी सी बैंड की, फिर KU बैंड की आ गई, तो उससे क्या हो गया कि आपने अपना लोकेशन पैरामीटर सेट किए, चेक किए, और अपना सैटेलाइट के हिसाब से आपने उसको कर दिया और आप लिंक होना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें फिर आपके रिसीविंग एंड पे जहाँ पे भी आपने रिसीव करना है वो आपके फिक्स होते थे, तो दूर दूर से आप अपने भेज सकते थे सिग्नल। उसके बाद फिर आपका ऑप्टिकल आ गया, ऑप्टिकल आने के बाद आपका जो है जितने भी रिलायंस या बाकी और प्राइवेट चैनल्स थे उन्होंने अपने स्टेशन सेट कर दिए, और ऑप्टिकल आने के बाद तो फिर आपको पता ही है कि बहुत सारे चैनल भी आ गए, बहुत सारे, क्योंकि एक केबल के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, और उसके बाद कन्वर्जन आपको स्टेशन टू स्टेशन सबको मिल जाता था।
तो एक तरीके से ट्रांसमिशन वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा सा
इजी हो गया, फिक्स हो गया, मतलब आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ लेने की, जब से वो सैटेलाइट आए तो आपको कोई भी लिंक करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। आप अपना छोटी सी डिश ले गए, छोटे से उसमें गाड़ियों में जाती थी, पहले तो बड़ी सी बैंड की तो बड़ी थी, लेकिन KU बैंड और दूसरे आ गए, फिर उसमें बहुत छोटी डिशें आ गई, तो उसको एक छोटी सी जगह में गाड़ी के अंदर भी आप मूव कर सकते थे। इनोवा वगैरह में आ गई काफ़ी सारे, तो वहीं कैमरा लगाओ आप, अपन लिंक करो और डाउन लिंक कर लो, दोनों चीज़ें आसानी हो गई।
तो मेरा एक सवाल ये कि मतलब क्योंकि पोर्टेबल
पोर्टेबिलिटी
बढ़ गई,
हाँ जी
पोर्टेबिलिटी बढ़ गई, और नॉर्मली मतलब जो कैमरा यूनिट ले जा रहे हैं वगैरह ये कोई कम उम्र के ही होते हैं,
हाँ जी, हाँ
है ना, तो उससे फिर और दूसरे टाइप की दिक्कतें शुरू हुई क्या?
दिक्कतें तो नहीं आई, लेकिन ये हुआ कि वन मैन शो हो गया। पहले क्या होता था, तीन चार आदमियों की टीम रहती थी, अब उसमें क्या है कि आपने कैमरा कनेक्ट कर दिया तो तीन चार आदमियों की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें वन मैन शो हो गया, और अगर वो बाहर जा रहा है तो उसको एडिट भी खुद ही करके देना, अगर अपलिंक करना है, और कैमरामैन जो है वही ऑल इन वन हो गया, और उसके बाद डिजिटल सिग्नल है आपके पास, आपने वो टेप लगानी नहीं है, कहीं प्लेयर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपने डाउनलोड किया, जब आज तक आया, आज तक ने सारा टेपलेस सॉल्यूशन लेके आया, तो उसके बाद लोग आस्ते आस्ते टेपलेस पे आने शुरू हो गए, मेमोरी ड्राइव आ गई, मेमोरी डिस्क आ गई, तो आप लैपटॉप में लगाओ और अपना वो सारी चीज़ें बहुत इजी हो गई, मतलब वन मैन शो हो गया।
हाँ, पर ये एक तरीके से जो टेपलेस,
हाँ
दिस वुड बी मतलब 2000 के बाद शुरू,
हाँ जी, हाँ जी, मैक्सिमम 2000 में, पर ये आ तो थोड़ा पहले, जब आज तक आया वो लेके आया, वो सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर गया वो न्यूज रूम का, नहीं तो पहले तो उससे पहले तो काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती थी, उन्होंने तो एक सिंगल वो सर्वर रखा, और सर्वर के बाद प्ले स्टेशन रखे जहाँ से आप अपने आओ डाउनलोड करो और उसमें डाल दो, कोई एडिटिंग कोई वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर दूरदर्शन ने तो थोड़ी बाद में, उनका तो सिस्टम वही रहा दूरदर्शन में, लेकिन ये है कि सल्यूशन तो आ ही गए थे और सल्यूशन आने से कुछ इजी भी हो गया।
तो मेरा एक सवाल है कि मतलब ये जो, क्योंकि दो तीन ट्रांसमिशन में भी सिस्टम्स बदल रहे हैं, कैमरा में भी सिस्टम उसी समय बदल रहे थे, टेप से टेपलेस जा रहा था सब एक साथ, लगभग एक ही 10 साल के पीरियड में सारे चेंजेस हुए हैं, उसमें मतलब वर देर एनी सिचुएशन एट दिस मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन, उसमें मेंटेनेंस में कुछ ज़्यादा क्योंकि नया भी हो रहा होगा प्लस पीपल आर कन्फ्यूज कि कौन से सिस्टम में क्या करना है वो?
नहीं, ऐसा है, लोग जो है ना ऐसा सब उसको अडॉप्ट करते गए, जो मेंटेनेंस पार्ट था ना वो कम हो गया। डिजिटल में तो देखिए उन्होंने कोई चीज़ ज़्यादा छोड़ी नहीं आपके लिए मेंटेनेंस करने के लिए। एक मिनट, क्योंकि डिजिटल के अंदर हर चीज़ आपकी या तो कंपनी से होगी या बहुत कम चीज़, 20% आप मेंटेनेंस कर सकते हैं, पावर सप्लाई के कोई फॉल्ट है उस रहे है। लेकिन दूरदर्शन ने अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाया, उनका जो अपना पुराना सिस्टम था वो तो चल ही रहा था। तो लेकिन ये है कि उनका जब तक फाइनल हुआ, जैसे ट्रांसमिशन था एक चैनल के लिए उनको एक स्टूडियो इन्वॉल्व करना पड़ता था, पूरी चेन इन्वॉल्व करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे डिजिटल आया, डिजिटल आने के बाद इन लोगों को क्या है, चार चार चैनल आप एक ही प्लेटफॉर्म से चला सकते हैं, आप एक डेस्क के ऊपर सारी चीज़ें डिजिटली आपने ले लिया, सर्वर आ गए, वहीं से आपने सिर्फ लोगो लगाना है और बाकी ट्रांसमिशन का जो एरिया है वो बहुत छोटे से उसमें हो गया। स्टूडियो तो जरूर यूज़ हुए, सारी चीज़ें वही थी, लेकिन उसमें जो चीन है आपने डाउनलोड किया, अपना डिजिटाइज किया, अगर टेप सिस्टम है तो डिजिटाइज किया, उसके बाद उसको सर्वर में अपलोड कर दिया और उसके बाद आपने एक प्लेलिस्ट बनाई और रन कर दिया, 8 घंटे की बनाओ 5 घंटे की बनाओ, तो वो काफ़ी काम ईजी हो गया। नहीं तो हर आधे घंटे के बाद आपको टेप रोल करना, उसमें फिर बीच में वो भी चलाने होते थे कमर्शियल, सारी चीज़ें मतलब एज पर क्यू शीट आपको, फिर बीच में कोई चेंजेस भी हो जाती थी तो ये सारी चीज़ें करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आज 4 से 5 घंटे का प्रोग्राम सिर्फ न्यूज़ को छोड़ के, क्योंकि न्यूज़ तो दूसरे स्टूडियो से आ रही है, बाकी ट्रांसमिशन का पार्ट आप पहले ही फिक्स कर लेते थे कि इसमें इतनी देर कमर्शियल जाएगा, इतनी देर कंटेंट जाएगा, इतनी देर ये प्रोग्राम जाएगा, तो वो थोड़ा ईजी हो गया।
एक सवाल मेरे दिमाग में जो आ रहा है, आप ये जो बता रहे हैं, मतलब ये जो ट्रांसमिशन में जो माइक्रोवेव से जो शिफ्ट हुआ
जी, जी।
उसमें जब सैटेलाइट लिंक्स एक तरीके से वो हो गए तो
हो
उसमें फिर इन्वॉल्व हो गए, केबलिंग बदल गई, तो वो राउटर्स वगैरह तो आने लग गए उसमें।
हाँ, वो तो जब डिजिटल में आप गए तो डिजिटल में आपको सारी चीज़ें आपको अवेलेबल, क्योंकि वो जब भी आप HD में या उसमें गए हैं डिजिटल फॉर्मेट में, तो सारा कुछ आपको चेंज करना पड़ा एनालॉग से, क्योंकि सबके डिजाइनिंग डिजिटल के बेस पे थे।
तो ये राउटर वाली जो एलिमेंट आती है उसमें, मतलब एक तरीके से वो वीक लिंक है इस पूरे चेन में,
जी जी जी,
है ना? तो उसके बारे में जरा बताएंगे, क्योंकि राउटर,
हाँ सर, ऐसा है, जब हम एनालॉग पे ट्रांसमिशन करते थे उसमें क्या होता था, ऑडियो वीडियो जैसे महेंद्र जी ने बताया, सभी सोर्सेज से एक कॉमन रूम में आता था और वो एक तो PCR रहता था, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, उसमें सारे सोर्सेज आपके इंटरलिंक होते थे, एक स्टेप पे आते थे और उनको पैचिंग का प्रोविज़न था, ऑडियो वीडियो पैचिंग कर सकते थे, अगर कोई फॉल्ट आ गया किसी भी उसमें BTR चल रहा है उसमें फॉल्ट आ गया तो आप उसको BTR को चेंज करके आप कैमरा काट लीजिए, उतनी देर रुकावट या कुछ भी जो भी देना आप दे सकते हो और आप VTR को चेंज कर सकते हैं, या कोई बाहर से सिग्नल आ रहा है उसको आपने डायरेक्ट पैच करके सीधा ट्रांसमीटर को दे सकते हैं, आपके पूरी चेन में कोई दिक्कत आ गई। मेन दिक्कत आती थी वहाँ पे जब आप पावर सप्लाई से स्विच ओवर करते थे जनरेटर के ऊपर, तो उस टाइम में कोई लूज कॉन्टैक्ट है कुछ भी है तो वो स्टैब वगैरह सिंक जनरेटर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे या किसी की सप्लाई, लेकिन वो सारे स्टैंड बाई में रहते थे, कई बार वो दोनों चीज़ें बैठ जाती थी तो उसको सर्च आउट करने में बहुत टाइम लग जाता था। तो यही था कि आप स्विच ऑन करके फटाफट पैच करो, और नहीं तो MCR में आप टेप लेके दे दो, ट्रांसमिशन कंटिन्यू रहे, आपको उतनी देर मिल जाती थी, 5-7 मिनट उसको रिकवर करने में। ट्रांसमिशन में यही था कि मिनिमम टाइम के अंदर अपना फॉल्ट रिमूव करना आपने। और जब से ये राउटर आ गया, राउटर में तो फिर क्या था, डिजिटल में आपको अलग अलग चीज़ें मिल रही थी, आपने जहाँ पे भी चेंज करना है TD के पास जो टेक्निकल डायरेक्टर था उसी के पास सारी फैसिलिटी थी, वो जैसे ही फॉल्ट देखता था चेंज कर देता था, या उसको अलग से VTR पैरेलल चल रहा है या कुछ भी है, जो भी देना उसको ऑप्शन थी दे सकता था।
क्यों राउट, जितना मेरे को समझ में आ रहा है राउटर की वो कंट्रोल तो सॉफ्टवेयर बेस्ड है।
हाँ वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑपरेशनल जैसे मैं बात कर रहा हूँ,
जो जो सॉफ्टवेयर में जो वो रीसेट वाली बात तुम कर रहे थे थोड़ी देर पहले,
वो अलग चीज़ है। वो ये कह रहे थे कि जैसे आप सिग्नल आया या पावर सप्लाई हुई, उस टाइम में चेंज ओवर के टाइम में आपका सिग्नल या तो रहेगा या नहीं रहेगा। एनालॉग में क्या था, स्क्रैची रहेगा या वर्टिकल आउट रहेगा, तो वो सिग्नल प्रेजेंस रहेगा। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं रहेगा, या 0 रहेगा या 1 रहेगा। तो उस टाइम में आपको सर्च आउट करना बड़ा मुश्किल है कि फॉल्ट है कहाँ पे, और जो 2-3 मिनट आपको ऑफ करके ऑन करने में लगेंगे उस टाइम पे आपका ब्रेकडाउन जाएगा, उसको कैसे रिमूव करना, उसके लिए फिर राउटर उनके पास TD के पास या MCR के अंदर कि वो स्टैंड बाई कुछ भी प्ले कर सकते हैं कुछ भी, जब तक उनको टाइम मिल जाता था। ये थोड़ा इजी हो गया था, पैचिंग नहीं करनी है आपने, राउटर से प्ले कर लेना है या कुछ भी सोर्स चेंज कर सकते हो,
बेसिक पूरा सोर्स आप चेंज करना है, तब तक ये सॉर्ट आउट,
तब तक उसको टाइम मिल जाएगा। और वो मल्टी लेवल पे रहता था, मतलब जैसे दिल्ली में है MCR में कोई प्रोग्राम चल रहा है, अब एक प्रोग्राम चला था अगर आपको याद हो श्याम बेनेगल के, क्या नाम था उसका प्रोग्राम का, भारत एक खोज,
भारत एक।
उस टाइम में हमारे 3 तो स्टूडियो इन्वॉल्व रहते थे, एक मेन, उसके बाद दूसरा स्टूडियो, उसके बाद तीसरा स्टैंड बाई जो MCR में रहता था। और 3 लोगों के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, जनरेटर पे चलता था सारा, उससे पहले जनरेटर में 1.5 घंटे का जो प्रोग्राम था उसको पूरा स्टैंड बाई पे चलाते थे, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वो 1-1.5 घंटे का ऐसे ही कोई मेन PM के या बाकी फंक्शन होते हैं, बाकी प्रोग्राम में इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके लिए भी मल्टीपल लेवल पे स्टैंड बाई प्रोविजन रखे जाते हैं, उसमें पावर सप्लाई भी आती है, प्ले बैक्स भी आते हैं।
तो ये सब जो प्रोसेस बने हैं ये ऑल्टरनेट कब लाने के लिए वगैरह, ये किसी मैनुअल में तो नहीं होगी आप लोगों को निकाल, तो ये इस ये कैसे तय कैसे हुआ कि ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, इसके बारे में ज़रा बताएंगे।
उस टाइम पे ये प्रोग्राम जो प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस के हिसाब से, जैसे हर 2 घंटे का 4 घंटे का हमारा एक पहले शेड्यूल मीटिंग होती थी नेशनल के अंदर, कि 5-5:30 बजे से अगर हमारा ट्रांसमिशन है उसमें न्यूज़ तक का 3.5 घंटे का एक शेड्यूल रहता था, फिर 11:30 तक का रहता था, उसके बाद फिर फिल्म आ जाती थी कई बार बाहर से, बॉम्बे से होनी है कहीं से होनी है, तो वो सारी चीज़ें पहले ही डिसाइडेड होती थी कि ये वाले प्रोग्राम में इतनी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, ये प्रोग्राम अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए ये हमने प्रोविज़न किया। वो ऊपर से जो ट्रांसमिशन सेट करते थे वो लोग डिसीजन मेक करके देते थे, और कई चीज़ें टेक्निकल डायरेक्टर के ऊपर होती थी कि एट द लास्ट मोमेंट कुछ अगर ऐसा हो जाता है तो उसको कितनी जल्दी रिएक्ट करना, उसको मालूम होना चाहिए मेरा फॉल्ट आया कहाँ से।
तो यही मेरा सवाल है कि मतलब ये जो ऑपरेशंस मैनुअल है, हाँ, वो बनाता कौन था, आप लोग बनाते
थे? ऑपरेशनल मैनुअल वैसे कोई नहीं, एक्सपीरियंस से जो हेड होता था, टेक्निकल हेड होता था, उसको पता होता था कि मुझे क्या करना, अगर ये प्रॉब्लम आनी है ऑडियो में आनी है मुझे पैचिंग करनी है, वीडियो में आनी है पैचिंग करनी है।
क्योंकि मेरे को जो समझ में आ रहा है यहाँ पे आप मल्टीपल सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे हैं,
हाँ,
तो इसको ऑर्गेनाइज करना भी तो एक बहुत बड़ा वो होगा।
नहीं, वो टेक्निकल डायरेक्टर देखता था वो सारा, जो स्टूडियो का पार्ट तो वही देखता था।
ओके, सवाल। तो फिर ट्रांसमिशन के अलावा आपने और कोई
हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे डिजिटल आया एनालॉग से तो अलग अलग जगह से जैसे प्रोग्राम आते थे, फिल्में आती थी, तो उसमें एक दिक्कत आती थी कि जो डिजिटल के अंदर फ्रेम फॉरवर्ड का होल्ड एंड फॉरवर्ड का सिस्टम था, तो उससे क्या होता था कि कई बार एडिटिंग में या वो एक दो फ्रेम में पता नहीं लगता था, लिपसिंग आउट हो जाती थी। तो उसके लिए फिर ऑडियो डिले यूनिट इंट्रोड्यूस किए गए थे, पहले नहीं थे ये। जब से डिजिटल आया फिर ऑडियो डिले यूनिट हम उसमें लगा के रखते थे, तो उसको उस टाइम पे सेट करना पड़ता था आपको कितना डिले चाहिए, एडिटिंग में भी होते थे और इसमें भी लगाए गए। ये डिजिटल आने के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है।
एडिटिंग ये ओबी वैन में भी होती थी? नहीं,
हाँ सब में होता
था। में तो और भी ज़्यादा होती थी लिपसिंग।
हाँ लिपसिंग की एक प्रॉब्लम बहुत थी, ये कॉमन
डिजिटल आने के बाद हुआ
है। डिजिटल आने के बाद इसमें क्योंकि फ्रेम तो होल्ड हो जाता था, एनालॉग में नहीं रहता
था। हल्का सा भी आपने रूट चेंज कर दिया भाई।
अच्छा ये चीज उसमें भी आती थी, टेलीसिने जब रोल करते थे उसमें दो तरह की फिल्म आती थी, एक में कॉम बैक आती थी जिसमें ऑडियो फिल्म के ऊपर ही रहता था, एक आती थी सैम बैक जिसमें सेपरेट ऑडियो होता था, मैग्नेटिक टेप अलग होती थी, ऑडियो की वीडियो की अलग होती थी, तो उसमें दोनों को मैच करना पड़ता था। अगर आपने दोनों मैच फ्रेम टू फ्रेम मैच नहीं किया तो वो लिपसिंग आउट जाएगी पूरी आपकी। ये एक टेक्निकली मतलब उस टाइम जो ऑपरेट करते थे उनको पता होना चाहिए कि क्या है।
क्यों
ये डिजिटल में ना एनालॉग में जो आपने बताया इसका कारण क्या था, जो सिंक लिप सिंक वाला?
हाँ, प्रोसेसिंग क्या है? हाँ, प्रोसेसिंग का सिस्टम ये रहता था कि जैसे जैसे आपने रूट चेंज कर दिया, सपोज करो ऑडियो वीडियो में दोनों डाल करके मक्स में डाल दिया और उसके बाद वो आपने दे दिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाय द वे आपने वर्चुअल सेट ले लिया, तो वर्चुअल सेट लिया, वर्चुअल सेट के लिए आपका वीडियो तो चला गया डायरेक्ट, ऑडियो में थोड़ा सा डिले आ जाएगा, तो उसके लिए आपको डिले करना पड़ेगा, उसका डिले एडजस्ट करना पड़ेगा। वर्चुअल सेट यूज़ करना है अपने न्यूज़ में या कुछ और कुछ करना है, जैसे ही आपने रूट चेंज किया उसी समय आपका डिले आ जाएगा, उसके लिए डिले यूनिट आपको यूज करनी पड़ेगी। आजकल तो डिजिटल वो आ रहे हैं ऑडियो कंसोल, तो उसके अंदर
उसमें तो हर में वो डिले होता है, पर उस टाइम शुरू शुरू में ये चीज़ें हमें करनी पड़ती थी।
तो ये आप ही लोगों को मतलब जो मेंटेनेंस में काम कर रहे थे?
नहीं मेंटेनेंस नहीं है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम।
ऑपरेशनल, तो ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम में द इंजीनियर्स इन द ऑपरेशंस रूम दे वर क्रिएटिंग द सॉल्यूशन।
हाँ वो सॉल्यूशन उस टाइम आपको देखना है क्योंकि कंप्लेंट कई बार आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, कई बार कहीं से डिस्टेंस पे आ रही है तो आपको पता करना है सोर्स में है या आपने छेड़ दिया, पता लगा वो पीछे बॉम्बे से ही प्रॉब्लम आ रहा, तो उसको वहाँ से करेक्ट कराना है या उनको बोलना है आप ऐसे रहने दो हम यहाँ करेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम नहीं कर रहे तो फिर हम उनको बोलते थे प्रीतमपुरा कि आप करेक्ट कर लो, तो डिफरेंट डिफरेंट उस पर वो रहता था।
तो हु विल करेक्ट इट, ये भी एक सवाल होता था।
इंजीनियर नहीं नहीं आपस में लाइन अप का कोऑर्डिनेशन करके करते थे।
ओके, और
वो तो ऑब्जर्व आप कंट्रोल रूम में बैठे हैं, आप कंट्रोल रूम में बैठे हैं, मेरी ऑडियो पे ड्यूटी है, मेरा काम है मुझे देखना है। हाँ मुझे ये नहीं है जरूरी कि कोई बताएगा मुझे कि ये आपकी ये प्रॉब्लम है, मुझे खुद देखना है कि मुझे अगर वो फील हो रहा है कि इसमें लिपसिंग आउट है तो मुझे उसके लिए करेक्शन करवाना है, मैं जो टीडी है उससे बोलना है या बॉम्बे वो कोऑर्डिनेट करेंगे कि इसको क्या करना।
तो ये कैसे तय करते थे आपको किसको बोलना है?
ये हमारे जो टेक्निकल डायरेक्टर रहते थे, हम तो ऑपरेशनल में बैठे हैं एक पैनल पे, तो जो टेक्निकल डायरेक्टर रहते थे उनकी ड्यूटी सभी उसको कोऑर्डिनेट करना होता था। अगर वो कहीं पे भी चाहे जनरेटर हो चाहे वो बाकी जगह हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कराना टेक्निकल डायरेक्टर का काम।
तो मतलब ये ताकि डबल डिसीजन ना हो, सिंगल पर्सन डिसीजन। ठीक है, एंड तो आपका फिर तो 2000 में आप ट्रांसमिशन में ही आपने ज्यादातर काम किया। और व्हेन टिल व्हेन वर यू इन दूरदर्शन, कब तक थे आप?
मैं 2023 तक रहा हूँ सर।
व्हेन यू वर इन ट्रांसमिशन राइट थ्रू?
हाँ ट्रांसमिशन भी रहा, फिर उसके बाद मैंने लास्ट के 5 साल तो कमर्शियल सेक्शन में था तो एजेंसीज के साथ डील किया. उससे पहले मैं ओबी वैन के साथ था, जो नई डिजिटल ओबी वैन थी उनके साथ मैंने 4-5 साल काम किया. और हाँ, किसान चैनल का इनॉग्रेशन के टाइम में मैं इधर था किसान चैनल में. तो उस टाइम भी सीपीसी के अंदर थोड़ा चेंज हुआ था, सारा डिजिटल से फिर एचडी में आ गए थे वो लोग. तो एचडी में सारा उनका प्लेटफॉर्म नए बने थे.
तो ये जब सीपीसी में जब एचडी आया तो यू आर डूइंग इन व्हाट रोल एट दैट
सर? मैं ज़्यादातर ऑपरेशनल में रहते थे या ओबी वैन के साथ, जो पीएम के या किसान के जो वहाँ पे हमने ना लूज वो बनाए हुए थे मल्टी सेटअप. तो वहीं लोकेशन क्योंकि खेतों वगैरह में रहती है, हर जगह ओबी वैन नहीं जा सकती, तो वहाँ पे उनके जो प्रोग्राम रहते थे तो मल्टी लूज सेटअप को ले जा के वहाँ पे सेट करते थे और वहीं रिकॉर्ड कर लेते थे.
तो सवाल मेरा अब बनता है कि मतलब ये सब एक्सपीरियंस करके हाउ डिड यू एंटर दिस लाइन, द लाइन ऑफ एक्चुअली मेकिंग दिस इक्विपमेंट?
इक्विपमेंट
मतलब यहाँ पे
जो रिटायरमेंट
के बाद.
हाँ, तो इसमें एक चीज़ जो हमें लगी कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले क्या था कि लोगों को ना एक स्पेशलाइज चीज़ चाहिए थी, ज़ीरो टॉलरेंस की चाहिए होती थी, क्योंकि चैनल्स के अंदर हर चीज़ बड़ी महंगी थी. और उसके अंदर क्या था, कोई भी आदमी अपने जो भी चीज़ें लेता था ब्रॉडकास्ट के अंदर, हर चीज़ें एक मोनोपोली की थी. अगर मेरे पास सोनी का इक्विपमेंट है तो सोनी को हैंडल करूँगा, अगर मेरे पास पैनासोनिक आया डिजिटल में पैनासोनिक आया तो फिर पैनासोनिक के अंदर लोग चेंज होना शुरू हुए. तो लेकिन ये जनरल जो ज़रूरतें हैं जैसे लाइट की है तो हैवी लाइट थी, फिर उसके बाद ट्यूब वाली लाइटें आई तो हमने लाइट में ज़्यादा काम करने की कोशिश की. ट्राइपॉड्स लेके आए नई तरह की, एक्सेसरी के अंदर हमने काम करने की कोशिश की ज़्यादातर.
ये एक्सेसरीज की बात करें मतलब दीज आर मैन्युफैक्चरर एग्नोस्टिक, मतलब ये डजंट मैटर, आप कैनन भी लगा सकते हो, सोनी
भी, कुछ भी लगाएं. तो उसमें इम्पोर्ट करके कुछ चीज़ें अपनी मंगाई, कुछ उसको अपने आप मैन्युफैक्चर किया, जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट आई. अब किसी ने हाई एल्टीट्यूड पे जाना है, दिक्कत क्या आती थी, बैटरी का कंजप्शन, बैटरी लो हाई एल्टीट्यूड पे वो कम टाइम में ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए क्या करना है, उसको प्रोविज़न क्या देना है, लाइट के लिए क्या प्रोविज़न देना है, बैटरी ऑपरेटेड लाइट देनी है, जैसी जैसी जिनकी रिक्वायरमेंट आई इंडिविजुअल यूज़र के लिए. और फिर ऐसा ऐसा क्या हुआ, चैनल्स भी चेंज होने शुरू हो गए. अब जो चैनल्स हैं वो एजुकेशन में भी एंट्री हो गई और बाकी छोटे चैनल्स आने शुरू हो गए. तो अभी एक कमरे के अंदर अब ऐसा ऐसा पॉडकास्ट आ गया, तो हर आदमी के हाथ में अपना कैमरा है, अपना वो है, रेजोल्यूशन अच्छे हो गए. जब से डिजिटल आया तो सारी चीज़ें अच्छी हो गई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई. लेकिन एक्सेसरी का तो देखिए जैसे जैसे आता रहा वैसे वैसे वो उतना ही आसान भी हो गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई.
तो सवाल मेरा ये कि मतलब एज समवन हु हैज़ कम फ्रॉम द इंडस्ट्री और आज आप एक्सेसरीज बना रहे हो, तो एक्सेसरीज तैयार करने के लिए आपको इक्विपमेंट की भी जानकारी तो होनी चाहिए,
जी, जी, जी,
प्लस
जी.
ये होना चाहिए कि मतलब व्हाट विल वर्क एंड व्हाट विल नॉट वर्क. तो उसको आप कैसे करते हो?
डाटा अपडेट जो आज मार्केट के अंदर अवेलेबल है, कुछ चीज़ें हम यहाँ हिंदुस्तान में तो या तो असेंबल करेंगे या तो जड़ से नहीं बनाते. हम अलग अलग जगह से लेके उनको यहाँ पे असेंबल करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर. तो अगर मुझे पता है कि मेरे को यहाँ पे इस प्रोडक्ट के लिए इतनी उसका चाहिए, एलईडी चाहिए, हम वही मंगाते हैं. मतलब एलईडी तो हम यहाँ नहीं बनता, बाहर से ही मंगाएंगे. और लेकिन उसको कितनी रिक्वायरमेंट है या उसके लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका वेट कितना होना चाहिए, उसमें जितना लाइट से लाइट कर पाएँ या उसकी ज़रूरत के हिसाब से. जैसे अब बैटरी है, बैटरी को अगर आप वार्म रखना चाहते हैं हाई एल्टीट्यूड पे तो उसके लिए एक अलग से केस बनेगा, स्पेसिफिक केस बनेगा, वो डिज़ाइन करके देना. या जो बाकी लोग हैं उनकी जैसी रिक्वायरमेंट है, किसी को मूविंग आजकल बहुत हो गया, माइक वगैरह, पहले माइक पोल ही यूज़ होते थे, अब तो कैमरा के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई, स्लाइडर आ गए, पहले वो क्रेन आई जिमी दीप आई, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, मतलब अब कैमरे का वेट कम हो गया तो बाकी चीज़ें अब गिम्बल आ गए, तो उसकी एसेसरी बढ़ती गई है. अब लोग नई नई एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, नई नई चीज़ें भी मांग रहे हैं, नई नई चीज़ें मांगते भी हैं. तो कुछ लोग हम मैन्युफैक्चरर करते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि कस्टमाइज है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं 1000 पीस मंगा के रख लूँगा या वो बिक जाएंगे, तो हर आदमी के अपने रिक्वायरमेंट.
तो टू गिव एन एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल अगर आप बता मुझे, जैसे लाइटिंग आप LED लाइट्स कर रहे हैं, नाउ इवन इफ द लाइट्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम समवेयर एल्स, वहाँ का एम्बियंट लाइट कंडीशंस विल बी डिफरेंट और यहाँ पे डिफरेंट है. सो इसकी जो मतलब कैलिब्रेशन वगैरह आप ही को करना पड़ता होगा.
जी 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 जी.
तो ये आप कैसे करते हो, हाउ डू यू डू इट?
इसमें तो एक तो हम जैसे मेन बोर्ड रहते हैं उसका CRI कितना चाहिए हमें, हाई CRI के अंदर वो कैसे काम करेगा, और उसकी जो मेन है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी पावर सप्लाई, जो एडाप्टर साथ में लगेगा वो कैसा लगेगा, क्योंकि पावर सप्लाई के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. हमारे यहाँ पे फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम बहुत है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन उस पर काम करते हैं, जनरेटर पर भी करते हैं, तो उसमें वो कई दिक्कतें ऐसी आती हैं कि वो वेरिएशन बहुत हो जाता है लाइट्स के अंदर. पहले वाली लाइटों में ज़्यादा नहीं होता था, वो आपने लगा दिया, उसका लोड आपने उसके साथ मैच कर दिया, तो उतने लोड का आपको जनरेटर चाहिए. अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बहुत कम वाट के अंदर आपका काम हो रहा. और अब चक्कर एक और है कि अभी पहले क्या होता था, प्रोफेशनल सारे लोग हर चीज़ को मांगते थे, अभी लोग लोअर उसमें भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट बहुत छोटी हो गई है. क्योंकि ट्रांसमिशन हर कोई कैमरे की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से उसकी रिक्वायरमेंट लाइटिंग में या बाकी चीज़ों में उतनी हाई रेजोल्यूशन उनको कैमरे से ही मिल जाती है, लाइट की कंडीशन बहुत कम चाहिए उनको, सिर्फ उसको एस्थेटिक सेंस जो उसको चाहिए या एक मूड क्रिएट करने के लिए जो लाइट चाहिए उसका रोल ज़्यादा रह गया.
कैमरा की अपनी कैपेबिलिटीज
ज़्यादा बढ़ गई है.
तो ये सारा मतलब एक तरीके से दिस काइंड ऑफ कैलिब्रेशन कैन ओनली बी पॉसिबल इफ यू गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम लाइटिंग, मतलब ऑपरेशंस का आपका एक्सपीरियंस है.
बिल्कुल बिल्कुल.
ओके. कोई ऐसा मतलब जस्ट बिफोर कंक्लूडिंग, इस क्योंकि यह बिल्कुल नया एरिया है, दिस लास्ट द शिफ्ट टूवर्ड्स लो कॉस्ट सिंगल सिंगल पर्सन कंट्रोल्ड प्रोग्राम मेकिंग, इसमें जमीन आसमान अंतर है बिटवीन 10 years अगो एंड टुडे. हाउ डू यू मतलब फर्स्ट हैंड एक एक्सपीरियंस, एक केस स्टडी बताएंगे जिसमें आपको हाउ यू कैन मेड द कैलिब्रेशन सो टू मेक इट पॉसिबल फॉर अ 1 person टू ऑपरेट सम सिस्टम. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू नो वट आर द वेरियस थिंग्स दैट कनेक्ट टू मेक अ डिसीजन.
देखिए पहले क्या होता था कि आप 2 channel पे रिकॉर्ड करते थे, ऑडियो सेक्शन जो था सिर्फ 2 channel पे ही था, लेफ्ट और राइट. लेकिन जब से HD आ गया आप मल्टी लेवल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप 9 language के अंदर आप उसको अलग अलग चैनल को यूज़ कर सकते हैं. और उससे क्या हो गया कि आपको एक ही चीज़ को, पहले क्या था डबिंग करनी पड़ती थी, अभी आप अलग अलग उसको चैनल को देख के आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा वो करना है. ये एक बहुत बड़ा इजी हो गया काम करने के लिए ट्रांसमिशंस के अंदर. और बाकी इक्विपमेंट हैंडल करना अब बहुत इजी हो गया, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रह गया. जैसे पहले हमारे टाइम में क्या होता था कि हर आधे घंटे बाद आपको ध्यान रखना पड़ता था कि इक्विपमेंट गर्म तो नहीं हो गया, उसके टेम्परेचर बढ़ गया तो आपका सारा शूट ख़राब हो जाएगा, कोई रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ गई, कलर की प्रॉब्लम आ गई, हर उसमें आपको ऑब्जर्व करने रहना पड़ता था. अभी इतना ज़रूरी नहीं है, इतना आपने एक बार सेट कर दिया आपका प्रोग्राम थ्रू हो गया तो उसमें गलतियां बहुत कम होंगी.
फिर भी मतलब जब प्रोग्राम देखते पता चला कि उन्होंने प्रोग्राम तो बना दिया आधा फोकस में ही नहीं है,
वो मैनुअल प्रॉब्लम होगी सर, इक्विपमेंट की नहीं होगी. अब किसी को, अब किसी को नज़र ही, अगर वो जो ऑपरेटर है उसकी अपनी आई साइड का डिपेंड करता है कि वो उसको रेड को कितना रेड लेना चाहता है.
तो मतलब तो क्वेश्चन आई एम कमिंग टू ये है कि क्योंकि अभी आपके पास कैपेबिलिटी आपने आपके हाथ में इतना आ गया है, हाउ डू यू डिसाइड विच वन टू वर्क ऑन एंड विच वन टू इग्नोर.
ये तो मैन टू मैन डिफरेंट करता है, क्योंकि इसमें आपकी अपनी सेंस है आप उसको कैसे करना चाहते हैं. क्योंकि कई लोग रिच कलर पसंद करते हैं, वो अपने उस हिसाब से चलते हैं, क्योंकि सैटेलाइट ट्रांसमिशन में थोड़ा कलर लॉस है. जिनको ये समझ है वो हाई रिच कलर पसंद करते हैं, थोड़ा बढ़ा के रखते हैं कलर्स को, वार्म कलर्स यूज़ करते हैं. पहले ये एक्चुअल जाता था, जो भी जाता था.
ओके, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर.
थैंक यू डियर.
तो बस वंस अगेन फॉर्मली हम लोग मतलब इसको यूज़ करने से पहले आपको एक रिकॉर्डिंग भेज देंगे और वो हाइलाइट्स उस पर, तो अगर आपको कोई इतराज़ नहीं हो देन वी कैन अपलोड इट फॉर द आर्काइव.
ठीक है सर.
थैंक यू.
थैंक यू सर.
आपको भी वंस अगेन, आप भी बैठ